ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय चौथा श्लोक संख्या 5 और 6 3 4 5 6 पांचवा श्लोक इस तरह जाता है। तथापि तद अभिप्रेतम जानन अहम अरिंदम पृष्ठ तथो अन्वगम भर्तु पाद विश्लेषण क्षम तथा अपि तिस्पति तद अभिप्रेतम उनकी इच्छा जानन जानते हुए अहम मैं अरिंदम हे शत्रुओं का दमन करता विदुर पृष्ठता पीछे अन्वगम अनुसरण किया भर्तु स्वामी का पाद विश्लेषण उनके चरण कमल से दिलगाव अक्षम समर्थ न होकर अनुवाद है हे अरिंदम विदुर वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछोह को सह पाना मेरे लिए संभव न था। आज का श्लोक है अद्राक्षम एकम आसिनम विचिन्वन दैतम पतिम श्रीनिकेतम सारस्वत्याम कृतकेतम अकेतनम अद्राक्षमेकमासीनम विचिन्वन् दैतम पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतमकेतनम अद्राक्षमेकमासीनम विचिन्वन् दैतम पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतमकेतनम अद्राक्षमेकमासीनम विचिन्वन् दैतम पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतमकेतनम अद्राक्षम मैंने देखा एकम अकेले आसीनम बैठे हुए विचिन्वन गंभीर चिंतन करते हुए दैतम संरक्षक पतिम स्वामी को श्रीनिकेतनम लक्ष्मी जी के आश्रय को सरस्वत्याम सरस्वती के तट पर कृतकेतम आश्रय लिए हुए अकेतनम बिना आश्रय के स्थित अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्ष तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा यद्यपि वे लक्ष्मी जी के आश्रय है। जो लोग सन्यासी हैं वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है अतएव वे हर वस्तु के आश्रय है। अतएव सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन श्राकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथं तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणालिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्कृते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतनम्। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे लक्ष्मी जी के आश्रय हैं। यहां सन्यासियों के बारे में खास तौर से लिखा गया है कि ज्यादातर वो लोग अकिंचन होते जिन्होंने सर्वस्व का त्याग किया है, जिनके पास कुछ भी नहीं है तो उनका आश्रय पेड़ ही होता है। शिव जी जैसे अकिंचन, इनको सारे जगत के माता पिता होते हुए भी कोई घर नहीं, हर रोज कहीं गुफा या पेड़ के नीचे आश्रय करते सारे परिवार को लेकर, और किसी की इच्छा भी नहीं कि इनको घर भी चाहिए। गणेश जी को नहीं है, कार्तिक को भी नहीं है, ये अजीब सी बात है। भगवान सारे संसार के जड़ को काटने के लिए 15वें अध्याय में उसको उल्टा वट वृक्ष का उदाहरण देता है। संसार को उल्टा वटवृक्ष कहना, ऊर्ध्वमूलं मदः शाखं अश्वत्थ प्रावव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणामी यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वः तस्य शाखात् प्रवृद्धा विषय प्रवाला मूलानु अनुसंततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्य लोके न रूपम अप्सियः। ये रूप जो उल्टा वट ये संसार में नहीं देखे, आसानी से नहीं दिखाने को मिलता, लेकिन ये ऐसा घना वृक्ष है कि एक बार अंदर फंसे निकलने मुश्किल हो जाता है। विषय प्रवाला, विषय रूपी बहुत सारे भौतिक इच्छाओं जो प्रवाल यानी समुद्र में प्रवाल होती है, छोटा सा जीव है लेकिन देखो क्या करामत है, उसकी असंख्य शाखाएं 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 इतनी निकलती है कि जड़ कहां है वो पता नहीं चलता। तो ये विषय भी ऐसे पड़ा है। ऐसे वट वृक्ष को काटने के लिए एक ही हथियार होता है, एक ही हथियार है, ज्ञान रूपी आसी तलवार आसीन है वो ज्ञान रूपी होनी चाहिए। तो ज्ञान रूपी तलवार से सर्वप्रथम इस जड़ को काटनी है, उनकी जड़ को काटनी है। तो ज्ञान रूपी तलवार से जब जड़ कटती है तो वहां वैराग्य पैदा होता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो बेटे हैं, भक्ति करते ये पैदा होने ही चाहिए, नहीं तो भक्ति कच्ची है। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता और ज्ञान की आवश्यकता है जो जड़ काट लिए। भगवान दोनों से संपन्न है, भगवान के छह ऐश्वर्यों में त्याग जो बताया है वो ऐश्वर्य कहलाता है, क्योंकि वो त्यागने में स्वतंत्र है। हमें परवशता से त्याग करना पड़ता है, लेकिन भगवान को परवशता नहीं होती त्याग, वो अपने स्वतंत्रता से सब कुछ सारी चीजों को त्याग कर देते हैं। वो ऐसे स्वराट तो हमें यहां ये सीखने के लिए मिलता है कि सारी सृष्टि के ये संरक्षक पति है, लेकिन खास करके अपने ही स्वांश जो यदुकुल में पैदा हुए हैं उन्होंने अपने विस्तार अपनी रानियों द्वारा अपने एक एक रानियों से दस दस बेटे पैदा करके किया, और इनको कैसे उन्होंने त्याग से स्वधाम पहुंचाने की। इनका त्याग, इनकी विरक्ति, इनको कुछ एक शरीर के रोम में भी कंपारी नहीं आती, ऐसे कितना आसानी से त्याग कर देते हैं। सारी लीला वो समेट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ढंग से समेट लेना चाहते हैं कि नाश का कर्तव्य में भौतिकता में तो दुष्कर्म ही कारण बनता है, तो भगवान ने हमें समझाने के लिए अपने स्वांशों को दुष्कर्म करते हुए नाश करवाया, ऐसा भौतिकता से समझ सकते हैं। लेकिन भगवान जो आध्यात्मिक भूमिका में हो कैसे दुष्कर्म कर सकते, देखने वाले तो कुछ और ही देखते हैं लेकिन वो सही नहीं देखते। जिस ढंग से देखना है यह पश्यति स पश्यति, जैसे इस ढंग से यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से यह देखता है वही सही देखता है। इनके शरीर के विनाश, सारे यदु वंशियों के विनाश, ये कोई भौतिक इच्छा के कारण नहीं, भगवान अपने स्वधाम में से ऐसे विशुद्ध भक्तों जो उनके स्वांश हैं जो नित्य मुक्त है इनको लेकर आए थे, और कहीं तो देवता भी थे, इनको अपने अपने मूल स्थान पर पहुंचाना ये इनकी इच्छा, क्योंकि वे स्वयं जा रहे हैं तो इन लोगों की आवश्यकता क्या है। जब भगवान अवतरते हैं तो भगवान के साथ सब कुछ अवतरता है, उसमें उसके नित्य परिकर जो हैं, जो हमेश के लिए उनकी अनंत लीला में प्रवेश कर चुके हैं, वहां से एक कदम वो लोग बाहर भी नहीं निकलते, यज्ञत्वान निवर्तन से वो धाम भी स्वयं आता है। तो ऐसी लीला में भौतिकता कारण मात्र असर नहीं। तो इस ढंग से जब भगवान सारी यदु कुल का विनाश करने की इच्छा करते हैं तो उसको हम अपनी ये भौतिक दृष्टि से कैसे देखें, नहीं देखें, यानी कि ये प्रस्ताव ही गैर स्थान पर है। जहां सत का परिचय हो ऐसी कथा में सिर्फ सत की ही बात होती है, असत की तो होनी ही नहीं चाहिए। तो असत दृष्टि से ये समझ नहीं पाते, उनका कोई भी प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए। जो ना समझ रहे हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन उनको खातिर धीरज धरनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। तो भगवान अपनी लीला करके निवृत्त हो रहे हैं और यहां उद्धव जी अपना स्वयं का अनुभव बताते हैं कि जब भगवान सारे यदुकुल का संहार करना चाहते हैं तो क्या उद्धव आध्यात्मिक भूमिका में नहीं थे? भगवान का पीछा करके उनको कहे कि विरुद्ध भी उनसे बिछड़ना नहीं चाहते थे, तो ये सारा जो भावावेश है वो आध्यात्मिक स्तर में है। और विदुर जी के साथ ये स्पष्टता इसीलिए करते हैं क्योंकि विदुर की ये सारे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य इत्यादि जो शत्रु हैं इनका नाश करने वाले हैं, और वो भी आध्यात्मिक स्तर पे हैं, इसलिए आध्यात्मिक चिंतन ही एकमात्र विषय ये सारे घटना में लागू होता है। तो विदुर जी समझ सकते हैं उद्धव जी के भाव के, ऐसी लीला जो निरंतर चल रही, अभी उसमें थोड़ा विक्षेप आ रहा है, जो निरंतर चलने वाली लीला है तो उसमें विक्षेप क्यों? हम भगवान यहां जब नाटक समाप्त करते हैं तो अवश्य दूसरा कहीं और भी तो होगा, लेकिन नहीं, इन भगवान ने आदेश दिया कि तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, नर नारायण के भक्तों की संगत करो और सब के लिए क्षेम कुशलता के लिए प्रचार करो। तो ऐसी भगवान की इच्छा है, फिर भी जो प्रेम भाव है उसके लिए वो खींचे आ रहे हैं। भगवान तो जानते हैं कि ये आसानी से जाने वाला नहीं है, सही ना? वही घटना पर मैत्रेय ऋषि भी आ रहे हैं, वही स्थल पे वो अनायास ही आते हैं, प्रभुपाद जी उसकी स्पष्टता भी करते हैं। अज्ञात सुकृति के कारण भगवान के दर्शन हुए, नहीं तो ये ज्ञान मार्गी व्यक्ति को भगवान के दर्शन कैसे सुलभ? जो भी है सबका स्थान है सारे समाज में, हर एक प्रकार के भक्त तो आते हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से ही उनको लभ्य है, वो स्वतंत्र है। तो इसलिए यहां जो घटना है सारी जो घट रही है वो कोई न तो आकस्मिक है न वास्तविक किसी के श्राप से पैदा हुई है, ये भगवान की इच्छा से ही स्पष्ट है। तो भगवान हमें क्या सिखा रहा है, हम अपनी इच्छा से यहां आए लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। भौतिक अवस्था में हम स्वतंत्र नहीं, भगवान जैसा अनुकरण करना हमारे लिए संभव भी नहीं। फिर भी समझने के लिए और उत्साह वर्धन करने के लिए जो काफी समझ की आवश्यकता है, उस दोनों को हमें साथ साथ में तालमेल लगाना पड़ता है कि यहां भगवान का जो त्याग है वो त्याग वैराग्य के द्वारा सफल होता है। तो हम पहले वैराग्य की भावना पैदा करें और बाद में आसानी से त्याग कर सकते हैं। जो वैरागी नहीं है तो उसका त्याग का दिखावा भी ठीक नहीं। त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है, कौन कहेगा?
रागी और वैरागी में क्या अंतर है? रागी तो जो संसार में जो विषय है उन्हें फंसा रहता है और वैरागी इनसे वृत्त हो जाता
है। त्यागी, रागी नहीं,
त्यागी।
हाँ, त्याग, त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है?
वैराग्य वो है कि हम विषय वस्तु में रहते हैं, हम इनसे अलग रहते हैं, और त्याग वो जिसे हम
त्याग में,
त्याग बाहरी कर्तव्य है, वैराग्य आंतरिक कर्तव्य है। उद्धव जी क्यों भगवान से बिछुड़ने की इच्छा करेंगे? जो असली राग है इसलिए तो खींचे आए हैं। राग यानी अटैचमेंट, वो सत्य हकीकत है कि भगवान के साथ का हमारा जो जो राग यानी लगाव होना चाहिए। इसीलिए आध्यात्म की दृष्टि से भगवान से मिलगाव असह्य होता है। हमारे लिए तो त्याग करना असह्य हो जाता है, तो वैराग्य की तो बात ही कहां। जो पहले वैरागी है तो बाद में त्याग करे वो ठीक है, बाहर का त्याग बहुत आवश्यक नहीं। रूप गोस्वामी ने क्या कहा, यथा अर्हम उपयुञ्जत, भगवान की सेवा में सब कुछ जुड़वान, अपनी सेवा में यानी कि विषयाशक्ति में आत्मा यदि फंसी रहती है तो वो रागी कहलाता है। चाहे बाहर से कितना त्यागवान क्यों ना हो लेकिन अंतरात्मा से तो सबकी इच्छा करता होगा। वो कहानी है ना कि साधु एक मारवाड़ी के घर आया, मारवाड़ी परिवार अपना बुजुर्ग भी था, तो मायावादी सन्यासी होते हैं। वो आया सब कुछ, एक चेले को भी ले आया। तो जब दान दक्षिणा की बात हुई तो वो साधु कहता है कि नहीं नहीं मैं तो पैसे को छूता ही नहीं। तो तुरंत वो बुजुर्ग मारवाड़ी बोल, मैं भी छूता नहीं, देखो आप भी कमाई करने नहीं जाते, मैं भी कमाई करने नहीं जाता। तो पैसे को छूने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन जब आपको खाना कपड़े की आवश्यकता, आप चेले को कह देते हैं, मैं अपने बेटे को कह देता हूं, आप और हमारे में सही है। हम दोनों शरीक है, मैं निवृत्त हो गया, यानी कि मैंने वो सकाम कर्मों का त्याग कर दिया है, हमें कमाई की आवश्यकता नहीं और आपको भी नहीं, आत्मा मेरे में फर्क क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसे त्याग को फलतू वैराग्य कहते हैं। प्रापंच की तया बुद्धया हरि वस्तु न संबंधि मुमुक्षो ही परित्यागो वैराग्यम फल दुख कक्षते। तो जिसके आंतरिक लगाव बना रहा है तो फल को त्यागी,
भगवान ने तो फल के त्याग को त्याग, फल के त्याग को त्याग कहा है गीता में।
सही, लेकिन फल का जो त्याग है तो उसके लिए कर्तव्य करने की भी आवश्यकता नहीं। क्या भगवान ने हमें कहा कि गधे जैसे कर्तव्य करो? नहीं, जहां तक आत्मा और शरीर टिकता रहे इतना कर्म ठीक, वो बंधन करता नहीं, लेकिन उसके उपरांत जो होता है। कहने का मतलब है कि रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्त विषयान यथा अहम उपयुंजत। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, अपने निर्बंध अपने संबंध में नहीं होना चाहिए, ये कर्तव्य किसका? त्याग का या वैराग्य? तो वो सच्चा वैराग्य युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य की स्थिति हमेशा बनी रहे, नहीं तो फलगु वैराग्य की आवश्यकता नहीं। तो भगवान की सेवा में हमें हर चीजों का उपयोग करना होता है, जिससे भगवान के साथ राग बना रहे, अटैचमेंट बना रहे। भौतिक विषय वस्तु पाप में वैराग्य की भावना होनी चाहिए, लेकिन यही विषय वस्तु यदि भगवान की सेवा में उपयोग आते हैं तो अवश्य करो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। तो भगवान ने जैसे 11 अध्याय में ऐसा बताया, तो उसी तरह कुंती माता भी कहती है। कुंती की प्रार्थना में वो बताती है कि ये सारा जो हमारा स्नेह का पाश है वो दोनों पक्ष से, वृष्णि कुल से भी है और पांडु कुल से भी है। भगवान आप कृपा करके ये स्नेह पाश काटो। ये स्नेह पाश भौतिक स्नेह पाश काम चलाओ होते हैं फिर भी हम काटना नहीं चाहते, वो जान जबरदस्ती से समय मृत्यु के रूप में जब आता है तो वो काटता है फिर भी हम काटना नहीं चाहते। तो यानी कि सारी सृष्टि यदि विसर्जन हो जाए फिर भी भगवान चलित नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति वैराग्य की जब होती है तो उसके लिए भक्तों को वो वैराग्य की स्थिति लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो साधना, भगवान का सतत स्मरण रहे, ऐसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की भी मृत्यु अपने सामने देखी है और वो सामान्य मृत्यु थोड़ी थी, अति भयानक। फिर भी इनका एक रोम भी हिला नहीं, कोई निष्ठुर हो जाता है क्या? तो ये प्रसंग काफी हमें बताया जाता है कि भगवान अपने आप को भी फिर से अन्य जगह यानी कि अपने स्वधाम स्वधाम में तो है ही, लेकिन हमारी दृष्टि से उनका स्वधाम अलग होता है। इसीलिए कहते हैं कि कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादि भी सह, भगवान स्वधाम जा रहे हैं तो वो क्या स्वधाम है, यही धाम लेकर चले गए। यहां तो हम लोग परछाई में जी रहे हैं, लेकिन यही स्थल है जहां लीला की, और ये लीला प्रभास पाटन में भी सारे यदुओं को भी वही अदृश्य कर दिया। कैसे किया कैसे नहीं, वो तो सिर्फ कहानी है, बाहर की अंदर की कहानी कुछ और ही। तो भक्ति में हमें आंतरिक व्यवस्था जो है वही समझनी होती है, बाहर कैसे क्या होता है, कैसे कोई चला जाता है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ये प्रश्न कभी कभी अपने कोई वरिष्ठ भक्त, जैसे तमाम कृष्ण महाराज जब चले गए तो ये प्रश्न काफी उठा था, क्योंकि वो भी अकस्मात में चले गए और कई इनके शिष्य हमें मिले महाराज क्यों ऐसा ही क्यों ऐसा ही क्यों। यदि ये प्रसंग इनके सामने समझाने के लिए हमने कोशिश की तो थोड़ी सांत्वना मिली। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भक्त किसी ढंग से भी चला जाता है तो हमें इतना तो आश्वस्त रहना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, यानी कि भगवान ही उसकी सारी संभाल करेंगे। उसे कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है वो भौतिक समस्या पर भक्तों का चिंतन नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। लेकिन जहां तक आत्मा बची है, आत्मा बची है, आज प्रसंग ऐसा है कि हमें दिल्ली में जाकर थोड़ा प्रवचन करना पड़ेगा, क्योंकि कल ही हमारे शिष्य आ रहे थे, काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ, भगवान ने बचा तो लिया लेकिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो हम जा रहे हैं तो हमें यही प्रसंग याद आ रहा है कि यदि भगवान बचाते हैं तो किसको बचाते हैं, शरीर को बचाते हैं या आत्मा को, जरा जानकारी देकर आत्मा की जागृति बनी रहे, उन पर ज्यादा हम अनुराग बनाए। तो ये प्रश्न 24 घंटे हमारे समक्ष होता ही है, सबके सामने होता है, ऐसा ही क्यों हो गया ऐसा ही क्यों हो गया। लेकिन भगवान की भक्ति में हमें यही आंतरिक समझ हमेशा प्रकट करनी होती है कि आत्मा अमर तो है लेकिन वो कितना रागी है कितना विरागी है, कहां पर उसका राग है कहां पर उसका विराग है, ये सब नापतोल करते ही हम उसकी क्या व्यवस्था होगी वो जान सकते हैं। सही ये प्रसंग में जो लक्ष्मी जी के भी आश्रय है वो सन्यासी जैसा निराश्रित रहकर पेड़ के नीचे आश्रय ले रहा है, ये कोई विरतापास है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं देखो सारी सृष्टि के आश्रय है, वो स्वयं आश्रय है, तो सृष्टि में उसके द्वारा उसकी शक्ति का जब प्रकट्य होता है, वो प्रकटीकरण पेड़ है तो उसमें वो आश्रय ले सकते हैं क्योंकि इनका है, उनके द्वारा बना है, हम ये मानते हैं कि देखो भगवान ने पेड़ के नीचे आश्रय दिया, लेकिन शास्त्र ये कहता है पेड़ भी भगवान के नीचे आश्रय है। कौन सी दृष्टि रखनी चाहिए? भगवान के लिए कौन सी दृष्टि? पेड़ भगवान के नीचे आश्रय है? पेड़ भगवान के आश्रय में नहीं है,
पेड़ भगवान के आश्रय में है।
हाँ, और भगवान ने पेड़ के नीचे आश्रय लिया,
अपना ही आश्रय लिया, इस तरह से अपना ही आश्रय लिया।
लेकिन दोनों सही है ना?
दोनों सही।
दोनों में एक ही तत्व है कि देखो भगवान ने पेड़ पैदा किया और अपने पेड़ के नीचे बैठते हैं,
अपने में बैठे,
अपना घर बनाया, अपने घर
बनाया। इसे कहते हैं कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास, ब्रह्म अपनी अपनी समक्ष ही वो नाटक करते रहे। सर्वमिदं खल्वं ब्रह्म, जो कुछ है वासुदेवम सर्वमिति, तो उसके लिए ये कितनी स्वतंत्रता है।
ये क्यों कहते हैं जी कि ये सब मेरे में नहीं है और मैं इनमें नहीं हूँ?
इनका इनका कहना है मैं बाजी पलटू हूँ। पता है बाजी पलटू या पार्टी बदलू? हम लोग मिथ्या अनुकरण करते हैं, आज कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में हो जाएंगे, कुछ न कुछ लाभ हम अपनी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं भी बदलता रहता हूं, मैंने पैदा किया है और मैं उसमें नहीं हूं, फिर भी वो मेरे आश्रय में है इसलिए मैं भी आता हूं तब उसमें ही।
पहले कहते हैं ये सब मेरे में है मैं इसमें हूं, फिर एकदम कह देते हैं कि ये मेरे में नहीं है मैं इसमें नहीं।
यानी कि इनकी स्वतंत्रता है हमारी स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी हम मिथ्या अनुकरण करते हैं। सही, हम कहां तक बाजी पलटते रहेंगे? हम शरीर में हैं, क्या शरीर में रह होने का आधार है? तब तो मैंने धारण किया, इसलिए मैं शरीर पर अनुराग रखता हूं, शरीर से छूट नहीं पाता। लेकिन शरीर ने मुझे आश्रय दिया है, यह भी सत्य हकीकत है, इसलिए शरीर स्वतंत्र है, वो छोड़ जाएगा। मैं यदि छोड़ना नहीं चाहता हूं फिर भी वो छोड़ चुके जाएगा। मैंने शरीर धारण किया है, मैं समझता हूं तो भगवान के बिल्कुल प्रतिस्पर्धी उल्टा ही विरोधी विचार हमारे हैं। ये विरोधी विचार को दूर करने के लिए ही यहां ये समझाया जाता है कि यह पश्यति स पश्यति, इस ढंग से ही देखो तब सही देखोगे, नहीं तो फिर से माया में पड़ो। यानी कि भक्तों की दृष्टि अपने अध्यात्म के चरित्र में ही वो तो विकसित होती है और वहां ही समाप्त होती है। हम छोटी छोटी बाबतों में भी काफी विरोधाभास बताते हैं, छोटी छोटी बाबत, तो बड़ी बड़ी बाबतों में कितना विरोधाभास दिखाई देगा। सही, एक दूसरे के साथ हमें सही ढंग से व्यवहार नहीं होता, सारे जगत के साथ तो कैसे हो सकता है? लेकिन एक के साथ सही व्यवहार करने से सब कुछ पता चल जाता है, वो एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी बाबत समझने से ही हमें ये सारा प्राप्त होता है। कि भगवान कहते हैं जो भक्ति का विषय है, भक्ति का विषय इनके लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रथम प्राथमिकता है। बाकी ये सृष्टि पैदा करना ये तो बहुत मामूली बात है। सबसे महत्व वो भक्ति में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भक्त को उनके स्थान के साथ समक्ष आना पड़ता है। उनका स्थान ये है जिसे वासुदेव कहते हैं, वासुदेव स्थान। सत्वं विशुद्धं वासुदेवं सत्यतम, ये विशुद्ध सत्व की स्थिति पर आना तब भगवान की का परिचय होता है। और भगवान ऐसे वसुदेव के ही बेटे बन सकते। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति समझने की आवश्यकता है, वो आध्यात्मिक स्थिति है जिसमें भौतिक गुणों का रंच मात्र प्रवेश है। तो जब भगवान अंतर्ध्यान होने वाले हैं तो उद्धव जी क्या क्या देख रहे हैं और हमें बता रहे हैं। जब मायावादी लोग कहेंगे कि ओ भगवान अंतर्ध्यान हो गए, किसी
लीन
हो गया, ना ना, किसी किसी व्यक्ति ने उसे तीर मारा, बात खत्म हो गए, वहां
शरीर
छोड़ दिया। तो लोग प्रभास पाटन में जानते हैं, यही इसी पेड़ के नीचे बैठे थे, यही अभी थोड़ा पैसा दे दो, धंधा बना दिया। तो कहने का मतलब है कि ये उद्धव जी के द्वारा ये जो विदुर जी के साथ चर्चा हो रही है, दोनों की चर्चा का माध्यम आध्यात्मिक है और उसमें दोनों पहुंचे हुए हैं और इनका चर्चा का विषय हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस ढंग से हमारे में भी ऐसी यदि भावना प्रकट होती है तो उसका विकास करना चाहिए, उसके विकास के लिए प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, उसका विकास के लिए सत्संग करना चाहिए। ये इसे अपने भौतिक राग द्वेष से हम छूटेंगे और आध्यात्मिकता में जो भगवान के प्रति अनुराग पैदा होगा तो भक्ति की सफलता बन जाएगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चद अहितकम। ये अहित की ज्ञान और वैराग्य जब पैदा नहीं होता भक्ति कच्ची समझो। भगवान की भक्ति ऐसे मामूली नहीं बताई गई है, इन चीजों को पैदा करना ही होता है। मार बचो के तो कभी नहीं सकते, लेकिन भक्ति की सही मार्ग पर सही मार्गदर्शन में यदि हम अपना प्रगति या विकास कर रहे हैं तो अवश्य पैदा ही होगी, उसके भी आश्वस्तता भगवान दे रहे हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है?
अच्छा, ये अंत में भगवान ने जो उद्धव को बताया समझाने के लिए जो बताया, वो उद्धव जी कौन सा बद्रिका आश्रम में गया? वो वर्धा का बद्रिका आश्रम में गया ना लाल का बद्रिका आश्रम?
नर नारायण कहा रहते हैं, इनके शिष्य कण कहा रहते हैं? हिमालय के बद्रिका आश्रम की बात कर रहे हैं, वही रहे यहां ब्रज के बद्रिका आश्रम में।
वही तो कोई बोलते इधर ही है ना उद्धव जी, वहाँ नहीं गया इधर।
हाँ हाँ तो ठीक है, उद्धव जी भी यहाँ है, जाओ वहाँ साधना करो। लेकिन वहाँ कोई रुकना नहीं चाहता कि रोटी का रोटी पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं से भी कर सकते, भगवान की भावना से ये बद्ध के आश्रम के दारोगा आदि बद्री तो वहां भी वही भावना बनी रहे। हमें तो वो डेवलप ही करनी है, कहीं से भी करो। हिमालय के बद्री के आश्रम में रोटी पानी क्या सबकी व्यवस्था है, मोटर गाड़ी भी वहां जाती है। श्री प्रभुपाद की जय।